ओम शांत। आज हम सभी आर्ट एंड कल्चर, कला एवं सांस्कृतिक प्रभाग से आप सभी को पूरे देश से बुलाए गए मेहमान यहाँ उपस्थित हैं और हमारे आदरणीय सभी मेहमान जो आए हैं उनको हम सभी स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस स्वागत सत्र में मैं हमारे सभी महानुभवों को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी जो इस परिसर के डायरेक्टर हैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जो कला एवं प्रभाग के कला एवं संस्कृति प्रभाग के चेयरपर्सन है वो मंच पर उपस्थित हों। हमारी पूनम दीदी जी जो कला एवं संस्कृति प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी मंच पर आए। हमारे प्रेम दीदी जी जो कला एवं संस्कृति प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी मंच पर आए। और हमारे दयाल भाई जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो भी मंच पर आए। हमारे करुणा भाई जी जो महासचिव हैं इस संस्था के वो भी इस मंच पर उपस्थित हों। मंच पर उनको मैं आमंत्रण करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो आदरणीय भगिनी रश्मिका उपाध्याय अभिनेत्री हैं बड़ौदा से आए हुए हैं उनको भी मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय भ्राता जलज चौधरी वो भी मंच पर आए और भ्राता श्रीधर कामले वो भी मंच पर आए सोलापुर से जो आए हैं और कुसुम बहन उन्ना से आई हैं वो भी मंच पर आए। उसके साथ साथ हमारे बीके अनिल भाई जो कला एवं संस्कृति प्रभाग के एक्टिव मेंबर हैं वो भी मंच में आकर मंचासीन हो। वैसे भी कहा जाता है कि कला एवं संस्कृति ये एक ऐसा प्रभाग है जहां पर हरेक कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। बहुत सुंदर पहले बहन ने कहा कि हर कार्य करने का अलग अलग कला होता है। इस ज्ञान सरोवर में जो अरावली पर्वत पर शिखर पर है और इसका जो नाम है वो बहुत सुंदर ही है और जैसे लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको स्वर्गीय अनुभूति होता है। तो आप सभी को इस सुंदर परिसर में हम आप सभी का वेलकम करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 90 साल संपूर्ण होने जा रहा है तो इस 90 साल के उत्सव में यह कला एवं संस्कृति प्रभाग का ये जो कॉन्फ्रेंस है ज्ञान सरोवर में रखा गया है और हमारा जो वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति एवं सद्भावना प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये राष्ट्रीय सम्मेलन आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला इस विषय पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारे मंचासीन जो महानुभव हैं उनको हमारी मीठी बहनें फूलों के साथ और उसके साथ बैज के साथ उन सभी का स्वागत करेंगे। सभी बहनों को मैं सभी बहनों को बुलाना चाहती हूँ वो आकर मंचासीन महानुभवों को बैज और फूलों के द्वारा स्वागत करें हमारे हर कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इस परिसर में रहने वाले जो समर्पित भाई बहने हैं वो हमेशा अपने बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा स्वागत करते हैं। मैं मधुरवाणी ग्रुप को आह्वान करती हूँ मधुर स्वर की सौगात लेकर। मधुरवाणी ग्रुप आया है आज संगीत के रंगों से सजेगा मंच और खिल उठेगा यह सुंदर साज। मधुरवाणी ग्रुप का सुंदर संगीत के द्वारा आप सभी का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र भाई, सॉरी बिथिंद्र भाई, भानु भाई, नितिन भाई और सतीश भाई।
ओम शांति। एक बार सभी कहें ओम शांति। प्रभु कलाकार के कलाकार कल का आकार सजाए हैं और ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर में आप यहाँ पर आए हैं और आज कलाकारों की ये रिमझिम यहाँ की शोभा आपसे बढ़ी है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप अपना अभिनंदन कर लें। बहुत बहुत स्वागत।
प्रभु कलाकार के कलाकार अब राज में पदार्पण है। ये ज्ञान सरोवर बना मनोहर पावन पुलकित कण कण है। ए कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है। ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति की शोभा संयुक्त परिवार है। प्रेम शांति सद्भावना की सबको ही दरकार है। भारतीय संस्कृति की शोभा संयुक्त परिवार है। प्रेम शांति सद्भावना की सबको ही दरकार है। है कलाकार करने चला मूल्यों का संवर्धन है। ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है। ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है। आओ निज परिवर्तन से परिवर्तन जग में लाए हम। स्वर्ग धरा पर आए पहले मन में स्वर्ग बुलाए हम। आओ निज परिवर्तन से परिवर्तन जग में लाए हम। स्वर्ग धरा पर आए पहले मन में स्वर्ग बुलाए हम। प्यार जहाँ परिवार वहाँ सेवा में समर्पण है। ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है। ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है।
आपकी तालियां, आपकी उपस्थिति
प्रभु ने बुलाया आपको अध्यात्म के संसार में, आप आए अपने घर में प्रिय प्रभु परिवार में। प्रभु ने बुलाया आपको अध्यात्म के संसार में, आप आए अपने घर में प्रिय प्रभु परिवार में। शुभागमन सम्मेलन में बरसा सुख सावन है, ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है, ऐ कलाकारों आपका शुभ स्वागत है अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है।
मधुरवाणी ग्रुप का भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है उनके लिए। और एक बार करतल ध्वनि करे, उन्होंने इस मंच को बहुत ही क्या ध्वनि के साथ और शब्दों के साथ बहुत सुंदर स्वागत किया। और उसके तत्पश्चात हमारे महुआ ग्रुप आए हैं डांस के साथ, नृत्य के साथ स्वागत करने के लिए। हर कदम में खुशी, हर अदा में प्यार का एहसास, मुंबई ग्रुप के स्वागत नृत्य से होगा आज कार्यक्रम का शुभारंभ खास। तो महुआ ग्रुप बहुत ही अच्छी तैयारी करके ये स्वागत नृत्य के लिए आए हैं। अभी हम उनका स्वागत नृत्य सभी देखेंगे।
पावन सुनहरे दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेम की रोशनी फैलाने आए हैं हम, टूटते रिश्तों को फिर से सजाने आए हैं हम। आज ये संगम, आज ये मेला, दिल से दिल का बने रेला, भूल के दूरी भूल के गम, प्यार से सबको गले लगाए हम। टूटे हुए इन रिश्तों को फिर से जोड़ने आए हैं, अपने पन की मीठी खुशबू हर दिल में हम लाए हैं। पावन सुनहरे दिवस पर आपका हार्दिक the wall।
जगत पर आपका हरि स्वागत है।
दिलों को जोड़ने आए हैं हम, प्रेम के रंग सजाने आए
स्वागत नृत्य से बहुत सभी का मन मोह लिया, इसीलिए इतना थोड़ा ताली से नहीं चलेगा, इसलिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही सुंदर नृत्य किया हमारी सुदेश दीदी और चंद्रिका दीदी, वो सभी को फूलों के द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम दीदी करनाल, आप 1980 से इस संस्था से जुड़े हैं। 1984 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। करनाल के कनेक्शन में 5 मुख्य सेवा केंद्र, 7 उप सेवा केंद्र और 150 जितने गीता पाठशाला है, उनका आप सुचारू रूप से संचालन करते हैं। कला संस्कृति प्रभाग के आप पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर थे, अभी आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और पर्सनली हम जानते हैं कि दीदी बहुत ही मीठी भाषाओं में अपने वक्तव्य हमेशा पेश करते हैं। और दीदी के लिए मैं कहना चाहूंगी, प्रेम सेवा और संस्कृति का जो फैलाती है सुंदर प्रकाश, प्रेम दीदी का स्वागत है। तालियों से गूंज उठे आज ये आकाश। प्रेम दीदी जी,
ओम शांति। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसे हुए इस सुंदर ज्ञान सरोवर में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका सुंदर विषय है आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला। 2 वर्ष पूर्व फरवरी 2024 में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी। उसके अंतर्गत संस्था के सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर एक बहुत सुंदर अभियान का भी लॉन्चिंग भारत के अनेक स्थानों पर हुआ है, जिसका विषय है पारिवारिक सद्भावना की कला। और आज का विषय तो हम सब ने सुना, बहुत ही सुंदर विषय है समय के अनुसार कि आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला, अर्थात आजकल जो परिवार विघटन हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में संवाद की जगह आज आधुनिक साधनों की तरफ सभी का बहुत ध्यान आकर्षित है। स्नेह विश्वास जो पारिवारिक संबंधों की नींव है, आज वो नींव डगमगा रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस से हम सभी को बहुत ही सुंदर महान अनुभवी वक्ताओं के द्वारा इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा कि किस प्रकार से परिवार में रहते हुए हम आधुनिक संस्कृति वाला जीवन जीते हुए अपने परिवार के मूल्यों को कायम रख सकते हैं, पारिवारिक मूल्यों की तरफ अपने सभी पारिवारिक सदस्यों का ध्यान खिंचवा सकते हैं और अपने परिवार के अंदर सुख शांति किस तरह से हम स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम सभी स्वागत सत्र में उपस्थित हैं, ये पहला सत्र है इस कॉन्फ्रेंस का। तो मैं सर्वप्रथम निराकार परम पिता परमात्मा शिव उनका इस सभा में बहुत 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 दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। जिस परम पिता परमात्मा के लिए कहा गया है, कौन वो विराट रचनाकार, परमात्मा शिव रचनाकार हैं, कौन वो विराट रचनाकार रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार, कौन वो विराट रचनाकार, आंख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, ऐसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है सबका सृजनहार, कौन वो विराट रचनाकार। तो इस सम्मेलन में सभी को परमपिता परमात्मा का वास्तविक सत्य परिचय बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होने वाला है, ताकि उनसे जुड़ करके अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने विश्व में हम मूल्यों को फिर से स्थापित कर सकें। जो मूल्य आज क्षीण हो गए हैं, मानव मन से निकल गए हैं, पुनः वो मूल्य जागृत कैसे हों, उजागर कैसे हों, उसकी सुंदर कला इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको दी जाएगी। तो सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित महानुभावों में से मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ परम आदरणीय राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी, जो कि महासचिव हैं ब्रह्मा कुमारीज के। आप मीडिया विंग के भी चेयरपर्सन हैं, मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर किस तरह से आप जन मन में जागृति ला रहे हैं, किस तरह से परम पिता परमात्मा का संदेश और परम पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता हर जनमानस में आप कर रहे हैं, किस प्रकार एक शांति की क्रांति सारी दुनिया के अंदर फैलाने के आप निमित्त हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज हमारे मंच पर उपस्थित है, तो हम सभी दिल से स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहूंगी, विजय जिनके साथ है, विजय जिनके साथ है, हाथ में प्रभु के हाथ है, सेवा जिनका श्वास है, ऐसे हमारे परम आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी दिन रात प्रभु की सेवा में मीडिया के माध्यम से आप कर रहे हैं, जन जन तक प्रभु पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आज के सत्र में अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सभी ताली बजाते रहें, अभी तो फर्स्ट सत्र शुरू हुआ है और सबका अभिनंदन हो रहा है, तो दिल से सबका आप भी साथ साथ स्वागत करती रहें। फिर मैं स्वागत करना चाहती हूँ परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज। आदरणीय दीदी जी, आप डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर के, जहाँ आप सभी बैठे हुए हैं ज्ञान सरोवर कैंपस के आप डायरेक्टर हैं। आपने देश और विदेश में इतनी सेवाएं की हैं कि जिनका वर्णन करना भी हमारे लिए कठिन है। जैसे कि आपने देश और विदेश में सेवाओं की पूरी धूम मचाई है, आपके मुखारविंद से निकले हुए शुभ वचन और ज्ञान के मोती इस प्रकार मानव मन में उतरते हैं कि हर मन उनको बटोरने में, अपने आप में भरने में इतना सभी एकाग्रचित हो जाते हैं, सबका मन बड़े सरल सहज ढंग से उस परम पिता परमात्मा से जुड़ाने के आप निमित्त बन जाते हैं। ऐसी दिव्य शख्सियत हम सभी के मध्य हैं, तो आज हम अपने हृदय की गहराइयों से जोरदार करतल ध्वनि से आपका आज की सभा में, आज के मंच पर बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप थोड़ा तालियां जोरदार बजा करके आदरणीय दीदी जी का दिल से अभिनंदन करेंगे। और मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि चेयरपर्सन हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, और आप चेयरपर्सन हैं यूथ विंग के। दोनों ही विंग्स को आप इतना बखूबी संभाल रहे हैं, तो मैं कहूंगी दोनों ही विंग्स को आपने विंग्स दे दिए हैं। सभी उड़ रहे हैं, उत्साहित हैं, उमंग में हैं, जुनून में हैं, नशे में हैं, खुमारी में हैं, खुशी में हैं कि हम क्या नहीं कर लें, कैसे हम जन जन तक पैगाम पहुंचाएं। तो आदरणीय दीदी जी की प्रेरणाएं समय प्रति समय हमें इतना उत्साहित करती हैं कि कुछ कर गुजरने को सभी आर्ट एंड कल्चर विंग के सदस्यों का मन करता है। तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए कहना चाहते हैं कि मानवता और स्नेह की साक्षात प्रतिमा है आप। मानवता और स्नेह की साक्षात प्रतिमा, ज्ञान रस की पावन सरिता, दृष्टि में जिनकी ऊर्जा का आदित्य है, वाणी में जिनकी अनुपम लालित्य है, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, हम आपका बहुत 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 हृदय की भावनाओं से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी दयाल भाई जी, जो कि वाइस चेयरपर्सन हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, आप ज्ञान सरोवर में पहुंचते ही ऐसे हृदय से, खुली बाहों से सबका हमेशा से ही हम देखते हैं कि स्वागत करते आए हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर, आपकी आत्मीयता को देखकर, आपके मिलनसार स्वभाव को देखकर एकदम सब आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मधुर वाणी है आपकी, बहुत सरल स्वभाव है आपका, और आप भी हम देख रहे हैं कितने लंबे अरसे से आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाने में आपका अहम योगदान है। तो आज आप भी मंच पर उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का बहुत 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 हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारी राजयोगिनी बीके पूनम बहन जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज के सम्माननीय अतिथि आदरणीय भगिनी रश्मि जी उपाध्याय, रश्मिका जी उपाध्याय, जो कि अभिनेत्री हैं, बड़ौदा से हैं, आदरणीय भ्राता जलज चौधरी जी, संस्थापक S2 डांस एकेडमी दिल्ली, आदरणीय भ्राता श्रीधर कांबले जी, उपाध्यक्ष सोलापुर जिला नाट्य कलाकार संघ, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका उन्नाव, और हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी अनिल भाई जी, जो कि एक्टिव मेंबर हैं कला संस्कृति प्रभाग के, मुंबई से हैं आप, और मंच सचिव हमारी अति प्यारी मधुर भाषी राजयोगिनी बीके तपस्विनी बहन जी, बहुत ही सुंदर मंच का संचालन कर रही हैं आप। और साथ ही साथ हमारे मधुर वाणी ग्रुप, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आप सभी का दिल से अभिनंदन और स्वागत किया, आप सबकी ओर से भी हम उनका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी भारत के कोने कोने से यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर विंग की इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो आप सभी का स्वागत करना तो मेरा परम कर्तव्य बनता है। आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि माला बनाई है मोती चुनकर, माला बनाई है मोती चुनकर, गुलदस्ता बनाया है फूल चुनकर, आप सबको शिव बाबा ने यहाँ बुलाया है, लाखों करोड़ों में से चुनकर, लाखों करोड़ों में से चुनकर, अपने लिए जोरदार तालियां। आप पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कारण अकारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कईयों की रिजर्वेशन कैंसिल हुई होगी, कोई फिर दूसरे की सीट पर भी आ गए होंगे, किस तरह से जिसका भाग्य उदय हुआ है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप सभी का मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित भाई बहनों को पुनः पुनः बहुत बहुत मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति।
सभी का स्वागत करने वाली दीदी का भी हम सभी स्वागत करते हैं। हमारे दयाल भाई, आप सभी ने उनका परिचय भी दीदी ने बताया बहुत अच्छी तरह से। दयाल भाई जी जो वाइस चेयरपर्सन है आर्ट एंड कल्चर विंग के, और जैसे ही ज्ञान सरोवर परिसर में हम पहुंचते हैं तो जो रिसेप्शन है, भाई जी आज बता रहे थे कि रिसेप्शन में होते हैं तो अपनापन लगता है क्योंकि वहाँ वो सेवा देते हैं। ऑफिस में गए थे तो बोला कि वहाँ पराया लगता है, तो कहने का अर्थ है कि जब भी कोई ज्ञान सरोवर में आते हैं तो भाई साहब के पास जरूर जाते हैं। तो वैसे भी भाई साहब बहुत ही दयालु हैं और उसके साथ साथ 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, भाई साहब के 81 ईयर्स की भी हम बधाई देंगे। भाई साहब आज के दिन भी बहुत युवा जैसी उनके पास शक्ति है और हमेशा उनके अंदर एक यस सर। तो हमने भाई साहब के अंदर दो चीजें देखा, एक तो बालपन और दूसरा एक मैच्योर है ना, तो दोनों का समन्वय है। भाई साहब इतने ऊंचे स्थान पर रहकर भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो इतने बड़े पोजीशन में है, और आर्टिस्ट को कैसे आर्ट के प्रति उनका जो स्नेह होता है, तो उसके लिए हमेशा वो यहाँ रहते हुए भी मुंबई की आर्टिस्ट खास करके, सभी आर्टिस्ट तो हैं ही लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो सभी को सकास भी देते हैं और समय प्रति समय जाकर वहाँ आर्टिस्टों को मिलते हैं, तो बहुत ही प्रभावशाली उनका प्रभावशाली वो व्यक्तित्व है। तो ऐसे भाई जी को मैं यहाँ पर मंच पर या स्टेज पर बुलाना चाहूंगी भाई जी को, और भाई जी अपना वक्तव्य सुनाएंगे।
ओम शांति। सभी बोले प्यार से ओम शांति। अभी मुंह से बोला कि दिल से बोला, सच्ची बताओ, मुंह से बोला, अब दिल से बोलो ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बोलो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, एंड फील दैट शांति इनसाइड। ठीक है, ये इस संस्था का स्लोगन है जो श्री पिता परमात्मा ने हम सबको सिखाया है। मंच पे मेरे सारे वरिष्ठ अति वरिष्ठ भाई बहने, करुणा भाई जी, जब मैं 1986 में पहली बार आया, पांडव भवन कहते हैं इसको, मधुबन भी कहते हैं, तब से मैं करुणा भाई जी के संपर्क में हूँ और इनके व्यक्तित्व से, इनके व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अभी भी हूँ। सभी मधुबन के हमारे भाई बहनों के वजह से एक मेरे पास में एग्जाम्पल है, कितनी उनमें नम्रता है और एक दूसरे के प्रति स्नेह है, मैंने यहाँ से सीखा बहुत कुछ। और सुदेश दीदी जी को से तो हमारा बहुत पुराना संबंध है, 1986 में जब मैं दुबई से ज्ञान में निकला तो सुदेश दीदी लंदन से आबू आते समय या आबू से लंदन जाते समय दुबई में हॉप बीच में उतरते थे, तो मेरा सौभाग्य होता था मैं दीदी को प्रोग्राम में ले जाना था, प्रोग्राम अरेंज करना दुबई शारजा अजमान उस तरफ में, और दीदी को प्रोग्राम में ले जाना ओमल को एंड शारजा वगैरह में। तो बहुत अच्छा मुझे सौभाग्य मिला सुदेश दीदी दादी जानकी को भी लेके जाना, लेके आना रास्ते में बहुत अच्छी बात है, और जयंती बहन वगैरह उनके साथ में। तो सुदेश दीदी वहाँ से हमारे बहुत है, चंद्रिका दीदी जी से भी हम उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन अभी 3 साल से यूथ विंग के बारे में सुना था मैंने कि यूथ विंग बहुत सेवा कर रही है, बहुत दौड़ रही है और ऐसे वैसे ये वो, और थोड़े थोड़े समाचार सुनते थे। लेकिन अभी हमारा सौभाग्य है कि इस विंग के जो ओरिजिनल, इस विंग को 35 ईयर हो गए करीब, और शुरू में दादी गुलजार जी थे हमारी चेयरपर्सन। दादी गुलजार बहुत बड़ी हस्ती है वर्ल्ड की, आप लोग जो नए भाई बहने नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहिए आप लोगों ने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज ब्रह्मा कुमारीज, तो दादी गुलजार जी हमारी चेयरपर्सन रही है। और रमेश भाई और उषा बहन, उन्होंने ये विंग शुरू की, वो बॉम्बे में रहते थे, बहुत पुराने हैं, तो अभी तीनों नहीं है, न रमेश भाई है, न उषा बहन है, न दादी गुलजार जी है, लेकिन हमने उनके अंडर में ट्रेनिंग ली है, सीखा है, तो वेरी गुड। और अभी इस प्रोग्राम में जो हमारे विशेष भाई बहने, मैं कहूंगा क्योंकि हमारी संस्था को लोग बदनाम करते हैं, क्या बदनाम करते हैं, ये भाई बहन बना देते, ऐसा बोलते ना, तो आप बताओ, श्रीपिता परमात्मा को हम लोग परमात्मा, परमपिता परमात्मा बोलते हैं ना, परम पिता, फादर ऑफ ऑल द सोल्स है ना, और हम आत्मा, तो हम लोग कौन हो गए, बाप और बच्चे, तो सारी आत्माएं बच्चे हो गए, तो सारी आत्माएं, जितनी मेल आत्माएं भाई हो गई, जितनी फीमेल आत्माएं बहने हो गई, ठीक है ना। इसका भी बड़ा किस्सा हुआ था, एक बार बड़ी दादी के साथ में कोई मीडिया पर्सन गए और उन्होंने कहा, दादी जी आप लोग भाई बहन बना देते हो, तो बड़ी दादी ने कहा, हाँ हम भाई बहन नहीं बनाते, आप बनाते हो। तो मीडिया पर्सन ये सोच में पड़ी, हम कैसे बनाते हैं दादी, तो उन्होंने कहा, देखो आप मंदिर में जाते हो और मूर्ति के सामने खड़े रहते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, और भगवान को कहते हो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, वाइफ भी कहती है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, वाइफ ये नहीं कहती कि तुम ही सास ससुर तुम ही हो, तो दोनों के माँ बाप एक ही हुए, तो तुम लोग आपस में कौन हुए, ठीक है ना। तो ये हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग यहां पर क्यों आए हो, मेन लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य ये है कि हम लोगों ने अभी तक अपना जीवन शरीर, देह की रिलेशंस और देह के अवेयरनेस, जिसको हम देह भान कहते हैं, उसमें हमने बिताया, क्योंकि हमको स्पिरिचुअल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल रिलेशंस और स्पिरिचुअल फैमिली, स्पिरिचुअल घर और स्पिरिचुअल बाप का पता ही नहीं था। एम आई राइट? तो आप लोग किस लिए आए हैं, अभी ये स्पिरिचुअल सृष्टि को समझने आए हैं। स्पिरिचुअल फादर कौन है, स्पिरिचुअल घर हमारा कहां है, आत्माओं का घर कहां है, आत्मिक रूप में हम लोग कैसे रिलेशन में है एक दूसरे के साथ में, ये सीखने आए हैं। और इस पढ़ाई को क्या कहते हैं, ये सारे पढ़ाई को एक शब्द कहते हैं, इसको कहते हैं राजयोग। अभी आप लोग, हम लोग सब राजयोग के स्टूडेंट है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ राजयोगा, राजयोगा एजुकेशन। एक भगिनी संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलावा, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन RERF, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसमें भी डीप में जाना है रिसर्च में। तो आप लोग एक माइंड सेट कर लीजिए कि हम अभी ये 4 दिन एज अ स्टूडेंट डायरी पेन लेके घूमेंगे, और जो भी हमको अच्छा लगा हम डायरी पेन लेके नोट करेंगे एज अ स्टूडेंट सिंसियरली। तो आप 4 दिन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आपको बहुत मजा आएगा, राइट? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
परमात्मा कैसे कार्य करते हैं भाई जी ने बताया, तो ये राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर विंग किस प्रकार से सभी कलाकारों के जो भी अंदर स्किल है, उनके अंदर जो कला है, वो कैसे परम कलाकार से जुड़कर अपनी शक्तियों को और बढ़ाएं, उसके बारे में बहुत सुंदर बात कही, इसलिए भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सभी करतल ध्वनि कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है ना। हमारे भ्राता करुणा भाई जी जो हमारे महासचिव हैं जनरल सेक्रेटरी, 1958 में आपने डिजाइन एंड डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया था, 1960 में आपने खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, आपका लगभग 13 भाषाओं पर प्रभुत्व है, 1971 में आपको हेडक्वार्टर बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में मददगार बनने के लिए, वर्तमान समय देखो भाई जी के अंदर कितनी सरलता है, सहजता है, और भाई जी बहुत ही स्नेह और शुभ भावनाएं भाई जी के अंदर है। भाई जी कह रहे हैं कि शॉर्ट में करो, है ना? अच्छा ठीक है भाई जी। वैसे आप देखेंगे कि हमारा ग्लोबल आईटी एंड वीडियो के, भाई जी मैं बहुत शॉर्ट में ही बता रही हूँ, आपके तो बहुत बड़ा बायोडाटा है कि आप इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के मैनेजिंग कमिटी के आप मेंबर हैं, 3000 घंटे से अधिक मूल्य शिक्षा टीवी सॉफ्टवेयर का उत्पादन किया, पीस ऑफ माइंड चैनल के आप ही आपके निर्देशन में चला रहे हैं, तो आप भाई जी के मुखारविंद से ही कला और संस्कृति कैसे, आज का जो विषय है उसके बारे में भाई जी आप सभी को अपना वक्तव्य सुनाएंगे। करुणा भाई।
सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे अत्यंत हर्ष है आप सभी यहां पधारे हैं, हमारे साथी भाई बहनों के अनुभव का विचार सुनने, अपना समय लेकर यहां तक आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मैंने एक प्रश्न पूछा, आप किस धर्म के हैं, क्योंकि आपका सबका ड्रेस देख रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप एक और धर्म तो स्थापन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो अनेक धर्म है देश में ऑलरेडी, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तो इस विश्व में पहले एक ही धर्म था जिसको सनातन धर्म कहा जाता था, उसमें भी विशेष जो भारत खंड जिसको कहते हैं, भारत खंड में जो संस्कृति थी वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति थी, तो उसकी स्थापना हम करते हैं, बाबा ने बताया। मैंने कहा आज तो दुनिया में कहीं नाम तक भी नहीं है तो आप ऐसा कार्य कैसे करेंगे, तो उन दिनों में केवल 380 हमारी दादियां थे जिन्होंने 14 साल तक तपस्या करके भारत में इस संकल्प से आए हैं, जो आज 50,000 से भी अधिक भाई बहने अपना संपूर्ण जीवन इस प्रचार के लिए 140 देशों में आज रात दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म जो है वो भारत की ही नहीं था तो वो विश्व धर्म था। तो मुझे हमारे लगभग 25 से ज्यादा विंग्स है, उन सब की जो कार्य है वो तो है ही, परंतु ये जो बाबा की जो संकल्प लेकर के जो विश्व में ये शिक्षा दे रहे हैं तो मैं बहुत बहुत दिल से इस विंग का जो कार्य कर रहे हैं उनको वंदना करता हूं। तो ये शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति ही ये शिक्षा है, जिसका भारत में मूल गुरु शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था, जहां आचार्य लोग वहां शिक्षण देते थे। और जो कला थी, तो जैसे आज आपने एक कला देखा अभी स्वागत में, इस प्रकार के शुद्ध कला जो आज तक देख रहे हैं आप लोग, शारीरिक का प्रदर्शन ये वगैरह जो है, उस प्रकार का नहीं था। तो जो भी कला देखते थे तो उससे ईश्वर की याद आती थी। और पहले पहले जो कला था वो मंदिर से शुरू किया। आज भी जो भारत में हिंदू मंदिर थे, तो अभी नीचे से खोद के देखा जा रहा है, उसमें सनातन धर्म की संस्कृति का ही कला था। तो और कला जो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, तो केवल मनोरंजन के लिए करने वाली जो वहां का समय का संस्कृति थी। परंतु अभी भारत में वो जागृति आए हैं, तो इससे नुकसान होता है। हालांकि हमारी जो भी म्यूजिक था वो भी एक बहुत सुंदर कला थी, तो जिस गीत से बारिश भी आ जाती थी और आग भी बरसती थी। तो इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त इस कला को आज हम देख रहे हैं सिनेमा में। तो मैं जब आया पहले ब्रह्मा कुमारी, इसमें मुझे कहा गया था ये सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा है, पाप का ये घर है। तो वहां जाके जो लेख रहा है तो वो आके क्या कर सकते हैं आप जानते हैं। तो इसलिए मैं फिर से वंदना करता हूं हमारे संस्कृति कला के जो ये विभाग जो सेवा कर रहे हैं, और आप लोग अपना समय दे करके यहां तक आए हैं, मुझे अत्यंत हर्ष है। तो आप भी इस प्रकार की कला को अपने दिल में रखते हुए अपने बच्चों को पहले सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हमारा आश्रम कोई वृद्धाश्रम नहीं है। ये यहाँ युवा भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, परंतु उनको सिखाया जाता है तो किस प्रकार बच्चे आज के समय अनुसार रहना चाहिए, जिसमें हमारे देश में पुनः वो संस्कृति आ जाए। क्योंकि हमारा ड्रेस में देखेंगे आप, और सिंपल कैसे सरल रहते हैं हमारी बहनें, बड़े बड़े घर के हैं फिर भी ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल सिंपल और सरल लगते हैं। तो ऐसे इन बच्चों में भी वो संस्कृति आ सके, और वो लोग भी आगे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारी भारत के जनरेशन के लिए वो एक आदर्श जनता बन सके, ऐसी शिक्षा देने की जो कला है वो आप सबके है। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, 1960 में मैं पहले यहाँ आया था, तो मैं अपने लौकिक घर में जहाँ जन्म लिया था वहाँ रात को भोजन करने से पहले 5 भजन और 2 मंत्र बोलना होता था। वो संस्कृति हमारे दिल में रहा जो मैं आज आप सबके सामने हूँ। तो मुझे सेवा जो मीडिया ये लोग कह रहे थे, तो उसमें 2 चैनल हम लोगों ने शुरू किए हैं, जिसको कहते हैं अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड। वो हरेक का घर में चल रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वो जितना भी आप देखते हैं तो वो घर बिल्कुल सुख शांतिमय घर हो करके है। तो इसीलिए आप उसको भी अपने घर में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। कई बार आपको बच्चे जब भी आप गुस्सा करते हैं या कुछ अनबन होते हैं घर में, तो बच्चे कह पूछते हैं, अच्छा आपको आश्रम में यही सिखाया है। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी आश्रम में ले जाना, क्योंकि उनको हम कहते हैं कॉपी कैट्स। वो जो हम करते हैं सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी संस्कृति हमको नहीं चाहिए जो बाप कह दे बच्चों को, फोन उठाया तो बोल दो पापा घर में नहीं है, तो बच्चे ने बेचारा कह दिया कि पापा घर में गए नहीं है ऐसा कहते हैं करके। तो आप चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति हमको नहीं बनाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता को कैसे हम इस जीवन में फिर से लाए, एक ईश्वर की प्रार्थना हम कर सके। आप से धन्यवाद करता हूं और निवेदन भी करता हूं, तो आप भी इस संस्कृति को अपने जीवन में लाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में लाएंगे और इसको इस सृष्टि पे पुनः जो ईश्वर हमारे बहने जो स्थापना कर रहे हैं सनातन धर्म का, उसकी स्थापना में आप सब सहयोगी बनेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं आप सबको वंदना करता हूँ। ओम शांति।
सुंदर शब्दों से किस प्रकार से हम कला में भी सभ्यता लाएं और हम अपने जीवन में कैसे गुणों को धारण करें। और भाई जी ने बताया कि दो चैनल है, पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग, उससे पूरा दिन 24 आवर्स चलता है और कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता है और उससे पूरे घर घर में, हर एक के घर में वो पहुंच गया है और बहुत सुंदर रीति से सभी उसका लाभ ले रहे हैं। हमारे आदरणीय दीदी चंद्रिका दीदी, चंद्रिका दीदी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्षा हैं और युवा प्रभाग के अध्यक्षा हैं, अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन ब्रह्मा कुमारीज के डायरेक्टर हैं। आप 34 सेवा केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था में विशेष योगदान रहा है, आप ब्रह्मा कुमारी में राजयोग शिविर के निर्माण के निमित्त बने, कल सुबह से राजयोग शिविर का आप सभी लाभ लेंगे, आपके नेतृत्व में युवा प्रभाग के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स हुए उसमें से कई प्रोजेक्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान शामिल है। आपको युवाओं की सेवा के लिए 1 मई 2002 को तत्कालीन गुजरात के गवर्नर सुदर्शन सिंह भंडारी जी के द्वारा गुजरात गौरव से सम्मानित किया गया। दीदी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ कला बने सेवा का माध्यम और संस्कृति बने पहचान, वहाँ चंद्रिका दीदी का योगदान है अनमोल और महान। हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस सुनहरी संध्या में परमात्मा छत्र छाया में हम सब बैठे हुए हैं, हमारे बीच परम आदरणीय सुदेश दीदी जी पधारे हैं एवं सर्व मंच के अति सम्माननीय महानुभावों को मेरा सम्मान अर्पण करते हुए आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, अभिवादन है और धन्यवाद है। कला वो संस्कृति के रूप में कब प्रकट होती है? आत्मा के अंदर तीन चैतन्य शक्ति हैं, जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और संस्कार, जिनके द्वारा हम कर्म में आते हैं। और जैसा हमारा मन बुद्धि संस्कार होता है, उसकी एक जो प्रतिभा बनती है, प्रभाव बनता है, इमेज बनता है, उससे संस्कृति का दर्शन होता है। हम सब यहां आए हैं भगवान की हर कृति में एक कलाकार बैठा हुआ है और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हैं हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, मानते हैं? अगर हम सब परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे अंदर एक कलाकार बैठा हुआ है। उस कलाकार को पहचानते हैं आप? आपको, आप उस कलाकार को किस कला का अधिष्ठाता कहेंगे? गान का, डांस का, चित्र का, किस अभिव्यक्ति का कलाकार कहेंगे? किस अभिव्यक्ति का कलाकार कहेंगे? देखो, आत्मा एक महान श्रेष्ठ कलाकार है और उनके अंदर सर्व गुण समाहित हैं, सर्व कलाएं समाहित हैं, सर्व शक्तियां भरी हुई हैं। क्या हमने हमारे अंदर छुपे हुए कलाकार को कभी देखा है? हमने अपना खुद का दर्शन किया है? आप यहां आए हैं, आपको अपने अंदर का कलाकार है उसका दर्शन होगा। जब व्यक्ति अभिव्यक्ति करती है और वो अभिव्यक्ति के भाव औरों को प्रभावित करते हैं, रोते हुए को हंसाना, गिरे हुए को उठाना, ना हिम्मत में हिम्मत भरना, ये एक सर्वश्रेष्ठ कला है। आज संसार के हर मानव को अपेक्षा है खुशी, प्रेम, आनंद, मान, सम्मान, और उसी को खोजने में वो कई प्रयत्न करते हैं। कहां से मिल जाए? क्लब में जाने से, पार्टी में जाने से, फिल्म देखने से, मित्रों के साथ जाने से, कहां से मिले? और हुआ तो ये है कि सब जगह जाकर के अपने आप को खो दिया है। आखिर मैं हूं कौन, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब आज हमारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन की ओर जा रही है, फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, सुसाइड कर रही है। क्यों? वो अंदर नहीं देख पाते अपने आप को और वो बाहर देख रहे हैं, और बाहर देख करके कंपटीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, जेलसी, ये सब इतने पॉइजनस विकृतियां जीवन में आ जाती हैं जो असह्य बन जाती है। इस कला संस्कृति की विंग के द्वारा। यही एक दिल का प्रयास है कि हर परिवार, परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरों को समझने लगे, एक दूसरों को सम्मान देने लगे, एक दूसरों के लिए जीना सीखे, एक दूसरों के लिए बलिदान दे और परिवार के अंदर स्नेह और सद्भावना का वायुमंडल बने। आज हम देखते हैं एक ही घर में 5 मेंबर हैं, हर एक अपने कमरे में है, और अगर कोई मित्र है नियरेस्ट एंड डियरेस्ट तो वो कौन है, कौन है? मोबाइल, सबको मालूम। अब हमें क्या करना है? यहां पर परम कलाकार परमपिता परमात्मा हमें ये सच्ची कला सिखाने आए हैं कि तुम्हारे भीतर में सोए हुए देवत्व को जगा दो। तुम दानव नहीं हो, तुम मानव भी नहीं हो, तुम तो एक योगी और देव की कक्षा के लिए आश्वस्त हो। थोड़े में मैं सुना देती हूं कि मानव दानव योगी देव किसको कहा जाता है, और यहां आप आए हैं अपना आत्मनिरीक्षण करके किस अवस्था में हो और किस अवस्था में पहुंचना है वो निर्णय करके उसकी शुभ शुरुआत करके यहां से जाना। दानव अर्थात राक्षस। राक्षस क्या कहता है? तेरा तो तेरा, सॉरी मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, ये राक्षसी वृत्ति है। और वो अच्छा काम करेगा नहीं, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको करने नहीं देगा, ये राक्षस है। राक्षस से ऊपर थोड़ा है मनुष्य। मनुष्य क्या कहता है? तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, स्वार्थ। और वो जीवन भर सबके लिए सब कुछ करता रहेगा, परंतु करके सुनाता रहेगा, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, फलाना किया। अब आपको बार बार कोई सुना है कि मैंने ये किया ये किया, तो आखिर इनमें आप क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे नहीं कि अगर सुनाना था तो करना ही नहीं था? हाँ, सुनना तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये मनुष्य है। योगी किसको कहते हैं? योगी कहते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ ऊपर वाले का है, परमात्मा का है। और वो अपने जीवन में कितने भी महान काम कर ले, उन्हें कभी अभिमान नहीं आता है, क्योंकि वो इस सत्य को जानते हैं कि करने कराने वाला परमात्मा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये है योगी। आपको यहां योग किसको कहा जाता है, योग कैसे लगाया जाता है, योग के द्वारा क्या प्राप्ति होती है, योग के द्वारा कैसे अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, आदि आदि। 3 दिन सुबह राजयोग शिविर में आपको ये सब सीखने मिलेगा। तो आप अपने को मनुष्य समझते हो तो एक योगी के जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हो। और देवता किसको कहा जाता है? जो कहता है कि तेरा भी तू रख और ये मेरा भी तू रख। जो देव वो देवता, और इसीलिए देखो 5 तत्वों को क्या कहा? देवता। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, उदय देवता कहते हैं, क्योंकि वो देते हैं, वो हमारे से कुछ लेते नहीं हैं। और मानव दानव योगी और देव से ऊपर परमात्मा है, परमात्मा एक ही है और वो एक परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, उनके साथ योग लगाना ये है सर्वोच्च कला, जिस कला के द्वारा जीवन में सर्व कलाएं स्वतः विकसित होती हैं, प्रकाशित होती हैं, अभिभूत होती हैं और उसके द्वारा दूसरों को उतना ही लाभ प्राप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप यहाँ 3-4 दिन आए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपने अंदर में श्रेष्ठ कलाकार हैं उसे पहचान के जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी वृत्ति में परिवर्तन आएगा, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, आपकी कृति और आकृति भी बदल जाएंगी, आपके जीवन में गहरा संतोष, खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होंगी। तो आप सभी को मेरे अंतर्मन से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि आप स्वयं यहाँ से एक श्रेष्ठ योगी का टाइटल धारण करके जाएं और जहाँ जाए वहाँ सबको खुशी दे, सुख दे, शांति दे। ओम शांति।
दीदी जी आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए दिल से शुक्रिया। दीदी के लिए करतल ध्वनि करें। इसके साथ साथ हमारी पूनम दीदी, राजीव विनी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, शालीमार बाग, नई दिल्ली। आप आध्यात्मिक सेवाओं में सदा सक्रिय रहती हैं। आप कला एवं संस्कृति प्रभाग की दिल्ली क्षेत्र की संयोजिका और कला एंड और संस्कृति का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। कलाकारों के जीवन में आध्यात्मिकता के बीजारोपण हेतु आप निरंतर प्रयासरत हैं। कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु दिल्ली में समय प्रति समय सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलनों व अभियानों के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाती रहती हैं। आपने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ग्रेसी सिंह को राजयोग का साप्ताहिक कोर्स करवाकर उन्हें ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बनाया है। वर्तमान समय ग्रेसी सिंह मुंबई में विले पार्ले सेवा केंद्र की नियमित विद्यार्थी है। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू में प्रतिवर्ष आयोजित होने व सांस्कृतिक सम्मेलनों में आप अनेक कलाकारों को लाती रहती हैं। हम दीदी के बारे में यही कहना चाहती हूँ, शुभकामनाओं के मधुर शब्दों से बढ़ेगा आज सबका उत्साह और मान। आइए आमंत्रित करते हैं पूनम दीदी को जो बताएंगी अपने अनमोल आशीर्वचन और वरदान। हमारी पूनम दीदी।
ओम शांति। बड़ी देर से हम सभी कलाकार परम कलाकार की बातों को सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने अभी अभी आप सबको जो प्रेरणाएं दी वो आपके मन बुद्धि में आज इस तरह से समा जाए कि आप परम कलाकार के प्रति अपनी कला को समर्पित करते हुए सत्य अर्थों में कलाकार यहाँ से बन करके जाएं। तो इन्हीं भावों के साथ सर्वप्रथम मैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का स्वागत और शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रेरणा आप सबको दी। अब मैं हमारे मंचासीन आदरणीय सुदेश दीदी जी, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना, हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, दैवी भ्राता करुणा बाई जी, दैवी भ्राता दयाल बाई जी और जो भी हमारे अतिथि, सम्मान्य अतिथि मंचासीन हैं, उन सबका मैं दिल से स्वागत करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए और साथ साथ सबके लिए यही शुभकामना आज रख रही हूँ कि जो भी हमारे वक्तागण अपने सुंदर विचार देकर के गए हैं वो आपके मन बुद्धि में समाहित हो जाएं, आप स्मृति स्वरूप होकर के यहाँ से जाएं, तो आपको सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आज का जो ये आधुनिक युग है इसमें हर कलाकार अपने प्रोफेशन के कारण से इतना व्यस्त है, लेकिन तकनीकी के कारण से उसका जीवन आसान भी हो गया है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है पारिवारिक मूल्यों की, कलाकार के परिवार के जीवन में, जो कि आज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, तनाव के कारण, अलगाव के कारण, समस्याओं के कारण, परिस्थितियों के कारण। लेकिन ऐसी कारणों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी हर कलाकार जो आज के इस सत्र का लक्ष्य दिया गया उसको अपने अंदर समाहित करके जरूर जाएंगे, क्योंकि जो मूल्य अभी अभी बताए गए अगर उनका हम संवर्धन करते हैं, परिवार के अंदर उसका हम संवाद करते हैं, तो जरूर हमारा परिवार, हमारा समाज सुखी भी होगा, सशक्त भी होगा और संस्कारित भी होगा। अपनी शुभकामनाओं को काव्य भाषा के अंदर रखना चाहूंगी कि आधुनिकता की तेज हवा में ना टूटे रिश्तों का प्यार, आधुनिकता की तेज हवा में ना टूटे रिश्तों का प्यार, संस्कारों की ज्योति जलाकर रखें सदा परिवार, संस्कारों की ज्योति जलाकर रखें सदा परिवार, सम्मान स्नेह और अपनापन जीवन का सच्चा श्रृंगार, मूल्यों की इस पावन धारा से महके हर घर परिवार, महके हर घर परिवार। तकनीक बढ़े विकास भी हो पर ना छूटे प्रेम का सार, पर ना छूटे प्रेम का सार, यही कला है जीवन की, मजबूत बने हर परिवार, मजबूत बने हर परिवार। बदल रहा है युग, बदल रही है दुनिया की पहचान, बदल रहा है युग, बदल रही है दुनिया की पहचान, परिवार के मूल्यों से ही बनता है इंसान, तकनीक के हाथों में पर संस्कार हो हृदय के पास, तकनीक हो हाथों में पर संस्कार हो हृदय के पास, तभी आधुनिक संस्कृति में खिलेंगे रिश्तों के मधुमास, रिश्तों के मधुमास, प्रेम सम्मान और विश्वास का रहे सदा विस्तार, प्रेम सम्मान और विश्वास का रहे सदा विस्तार, यही है पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की सच्ची कला और आधार, सच्ची कला और आधार। ओम शांति।
दीदी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा सभी कलाकारों को प्रेरणा दिया, इसके लिए दीदी का हम आभार मानते हैं। करतल ध्वनि में से हमारे मेहमान रश्मिका उपाध्याय, जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, डांसर, एसोसिएट डायरेक्टर, कैमरा असिस्टेंट, स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, 48 इयर्स के हैं, बड़ोदरा गुजरात से हैं। उनको गुजराती, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, भोजपुरी सारी भाषाएं आती हैं और 35 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा इन भरतनाट्यम, तबला, हारमोनियम एंड वोकल म्यूजिक, इंटरनेशनल आर्टिस्ट 35 इयर्स से, थिएटर आर्टिस्ट, फुल लेंथ प्ले किया है, वन एक्ट प्ले, मोनो एक्टिंग, स्किट्स, फोक डांसर्स, फीचर्स फिल्म, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक एल्बम, एडवर्टाइजमेंट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड एजुकेशनल फिल्म। एक्टर हैं, मॉडल हैं, क्लासिकल डांसर हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हैं, एसोसिएट डायरेक्शंस है, तो सभी कलाओं से वो भरपूर हैं। रश्मिका उपाध्याय जी,
नमस्कार। ओम शांति। परमप्रिय परमात्मा, सभी आदरणीय दीदियां, सभी आदरणीय भ्राताश्री, पधारे हुए आमंत्रित कलाकार भाई बहन और ब्रह्मा कुमारी के सभी भाई बहन को मेरा वंदन, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। आज मेरे लिए हर्ष और आनंद की बात है कि मैं जब यहां पर आई, इस ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में मैं आई, तो मुझे एक खुशी मिली, एक आनंद मिला, एक शांति मिली। मुझे लगा कि मैं एक अलग दुनिया में ही आ गई हूं। और सच में ये जो अनुभव होता है ना, वही हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे जाए। मैं सबसे बढ़िया अनुभव कल का ही मेरा है। यहां मुझे आना था, रात को 2 बजे बी के पारुल दीदी का फोन आया कि रश्मिका, आप रेडी हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले आ जाओ, मैं बाहर खड़ी हूं। हम लोग नजदीक नहीं रहते। मैं घर से निकली पर डॉगीज जो होते हैं ना, वो बहुत परेशान कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा आने में। और मेरे घर से 4 रास्ते पर मैं आई तो एक लड़का आया, इतना ही डिस्टेंस, मेरा जो हाथ है उतना ही डिस्टेंस है, वो बाइक लेके आया। मुझे बोलता है कि ये धवल सोसाइटी का एड्रेस कहाँ है? रात को 2 बजे 2:30 बजे वो मुझे एड्रेस पूछता है। और इतने में ही रिंग बजी मेरे फोन की, तो वो लड़का आगे चला गया। फिर मैंने बात करी पारो दीदी से, और फिर वो लड़का मुझे एड्रेस पूछ रहा था कि भाई ये सोसाइटी कहाँ है, वो सोसाइटी कहाँ है। मैंने कहा मतलब एड्रेस क्या है? तो बोले कारिल बाग है। पारो दीदी ने मुझे बोला कि कौन है, किसे बात कर रही हो? तो मैं बोली भाई ये एक लड़का है, मुझे एड्रेस पूछ रहे हैं। तो बोले अभी थोड़े कोई एड्रेस पूछता है, बात मत करो उससे, आप सीधी चले आओ और फोन चालू रखो। तो वो लड़का फिर भाग के चला गया। तो हो सकता है वो चेन स्निचिंग करने आया हो या फिर मोबाइल लेने आया हो। मैं सेंटर पे पहुंची और पारंग दीदी से कहा कि ऐसा हुआ है। बोले आपको बाबा ने बचाया है, बाबा के आशीर्वाद है आप पर। और सच में मतलब मेरा तो पहला अनुभव था। मैं यहां बहुत ज्यादा दिनों से जुड़ी नहीं हूं, पर मुझे लगा कि हाँ वाकई में बाबा का आशीर्वाद है, तभी मैं बच गई। क्योंकि रात को 2:30 बजे तो कोई होता ही नहीं है, मैं अकेली थी। तो इस तरह से बाबा ने मुझे बचाया। आगे मैं ये कहूंगी कि यहां जो मैं आई तो पारुल दीदी ने मुझे दयाल भाई से मिलवाया। अभी मैं पहली बार उनसे मिली, हमने आज से पहले तो मैं कभी यहां आई नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि अगले साल भी आना है और 10 लोगों को लेके आना है। मैं सोच रही थी अरे अभी तो मैं मिली हूं, कुछ कैसी हो, ये हो, हाय हेलो कुछ भी नहीं, और सीधा ये बात। फिर लगा कि हाँ ये एक अपनापन है, तभी तो कह सकते हैं ना, हम हक से कह सकते हैं कि भाई तुम आओ, अकेले नहीं आओ, 10 को लेकर आओ। अभी मेरे बारे में तो वो कुछ जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे कह दिया। तो मतलब यहां आकर के एक अपनापन सा लगा। और आज का ये विषय जो है वो बहुत ही अच्छा है कि पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन, उसका मूल्य कला के माध्यम से करना। तो वाकई में हमको इस विषय की जरूरत है, हम परिवार से जुड़े हैं और नहीं भी है, हम नजदीक भी हैं और बहुत दूर भी है। तो ये जो विषय है उस विषय से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेम, शांति, सद्भावना, वो हम ला सकते हैं, हमें खुद ही लाना होगा। दूसरा मैं ये कहूंगी कि ये जो आज का दौर है, इस दौर में वाकई में इसकी जरूरत है। जैसे हम लोग कलाकार हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग शूटिंग में हैं तो हम लोग मौज करते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमको भी स्ट्रेस है, हमको भी टेंशन है। हमें अपना जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर कुछ लेवल पर पहुंचने के बाद उस लेवल को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, तो वो टेंशन हमारे पास है। तो हमें मन की शांति की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कला के क्षेत्र में हो, बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी मिल का मालिक हो, बहुत ही बड़ा मालिक क्यों ना हो, अरबों खरबों रुपया क्यों ना हो उसके पास, लेकिन उसे शांति की जरूरत तो है। तो मैं यहां से जब जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि जब मैं शूटिंग में जाऊं तो अपने कलाकार भाई बहनों को, अपने टेक्नीशियंस को कुछ समझाऊं, कुछ बताऊं कि भाई मैं ऐसा सीख कर आई हूं, मन की शांति है तो इसके लिए हम यहां जाना चाहिए। तो ये मेरे घर के आसपास के जो लोग हैं उनको भी मैं समझाऊंगी कि हमें इस तरह से जाना चाहिए। दूसरा है कि मैं बीके पारुल देवी के साथ अभी कुछ ही दिनों से जुड़ी हूं। जैसे शिवरात्रि के दिन उन्होंने मुझे बुलाया, फिर योगा के दिन बुलाया, फिर ममा का डे था तभी बुलाया, पर वहां पर जाने के बाद उनका जो प्रवचन सुना तो उसमें से मुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो वो सोच वो समझ में अपने साथ ले जाऊंगी। और आज यहां पर बहुत सारे महानुभावों ने बहुत कुछ समझाया, तो वो भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और सबको समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि सब लोग यहां पर आए। जैसे कि दयाल भाइयों ने कहा कि एक नया, आप अकेले नहीं, आप 10 को लेकर आना, तो मैं कोशिश करूंगी कि 10 से ज्यादा लोगों को लेकर आऊं। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं यहां विराम लेती हूं। आप सबका शुक्रिया मुझे यहां बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए, आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।
अनुभव तो अनुभव ही होता है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से कलाकारों को और भी कैसे लेकर आएंगे उन्होंने बताया, तो हम उनको भी तालियों के द्वारा उनका सम्मान करते हैं। हमारे दूसरे कलाकार जलज कुमार चौधरी, दिल्ली से निगम पार्षद, वार्ड संख्या 55 शालीमार बाग दिल्ली, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के कार्यकारी सदस्य नियुक्त, सह प्रभारी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी के सांसद प्रतिनिधि, पूर्व अध्यक्ष युवा विंग, संरक्षक S2 डांस एकेडमी शालीमार बाग, मॉडल के रूप में विभिन्न विज्ञापनों एवं फैशन पत्रिकाओं के लिए कार्य किया तथा अनेक मॉडलिंग असाइनमेंट में सहभागिता की, शालीमार बाग क्षेत्र की विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सक्रिय सदस्य, सामाजिक सांस्कृतिक एवं जनसेवा गतिविधियों में निरंतर सक्रिय सहभागिता है उनका। और मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जिनके कदमों की ताल से सजती है कला की पहचान, जलल चौधरी जी का करते हैं हम सादर स्वागत और सम्मान।
ओम शांति। सम्मानित मंच और जितने भी ब्रह्मा कुमारी परिवार के यहाँ सदस्य भाई बहन बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पहली बार मेरा आना हुआ है, लेकिन सेंटर से, शालीमार बाग सेंटर से पूनम दीदी बैठी है यहाँ पे। दीदी ने बहुत परिवार की तरह, छोटे भाई की तरह आशीर्वाद शुरू से बना के रखा है और मैं लगभग 10-12 सालों से सेंटर में आना जाना मेरा लगा रहता है। दीदी और जितनी भी बहनें हैं वहाँ, उनसे राखी बनवाते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और भी सेंटरों से लगाव है, क्योंकि जब हम जुड़ते हैं तो वो बाबा का आशीर्वाद और उनका कहें कि लगाव अपने आप खींचता है। तो अन्य भी सेंटर हैं जहाँ से मुझे खुलावा आता है, मैं जाता रहता हूं। मैंने बहुत परिवर्तन देखा अपने जीवन के अंदर, और शुरू से एक लक्ष्य को लेकर, देश की सेवा को लेकर हम लोग लगे थे। पहले मैं मुंबई भी गया, बहुत कुछ सपने लेकर, सभी कलाकार जाते हैं, फिर वहाँ भी बहुत सारा काम किया। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब हमने बहुत सारी मॉडलिंग, मैं प्रेसिडेंट था अपनी टीम का, और वो तो खैर बहुत पुराना समय था, और सभी नए नए बच्चों को हम ट्रेंड करते थे, अपना अपने एक मेंटोर के रूप में, एक हम गुरु थे, हमारे मॉडल थे वो बहुत इंडिया के बड़े फेमस, तो वो हमें मतलब कोरियोग्राफर मतलब करके सिखाया करते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक जो कलाकार होता है ना, वो जब किसी भी, चाहे वो डांस के फील्ड में हो, चाहे वो मॉडलिंग कर रहा है, चाहे वो एक्टिंग कर रहा है, वो पूरी दुनिया देख चुका होता है, उसे पता होता है कि किस किस तरह के लोग हमारे इस सिस्टम के अंदर रहते हैं। और हमने वो सब जीवन को देखा, उसके बाद आध्यात्म की ओर लगाव हुआ, फिर मैं राजनीतिक जीवन में आ गया, और मैंने ये देखा कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए हमें, क्योंकि आधुनिक जीवन में इतनी बेस्ट लाइफ हम सबकी हो गई है कि हम शायद परिवारों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। और उसका सबसे मुख्य कारण है हमारा फोन, और जो आधुनिक जीवन में जो आधुनिकता आती जा रही है, तो फोन के फायदे तो बहुत हैं। आजकल तो अटेंडेंस भी नौकरी में फोन से लगने लगा है, जहां मैं निगम पार्षद हूं, हमारे जितने कर्मचारी आते हैं 100-200 सुबह में, वो सब फोन से ही हाजिरी लगाते हैं। तो फोन के फायदे भी हैं, लेकिन फोन के साथ साथ नुकसान बहुत हैं। आज हर घर का बच्चा, चाहे वो कोई शिक्षक खुद प्रिंसिपल क्यों ना हो अपने स्कूल में, लेकिन उनके भी बच्चे बगैर फोन के खाना नहीं खाते हैं। और हम सब, जो हमारा जो एक मतलब पारिवारिक परंपरा था कि हम अपने पिता के साथ बैठते थे, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ घर में बैठते थे, खाना खाते थे, उस टाइम बात करते थे, आज वो कल्चर खत्म हो चुका है। सब अलग अलग अपने कमरे में टीवी खोलते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, और उनको खाने का स्वाद नहीं पता क्या है, बट वो फोन देख रहे होते हैं, और बगैर फोन के तो खाना अंदर जाता नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को बदलना चाहिए, जो हमारे कल्चर में, जैसे अभी हमारे आदरणीय भाई साहब बता के गए कि सनातन संस्कृति में आपको बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, जो ये इतने सारे हमारे जो ये त्यौहार हम मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि परिवार एकजुट हो, हम एकजुट होकर उस परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। आज भी जो ये रामलीला मंचन होती है, आपके यहाँ जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारी संस्कृति को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, इसको दर्शाया जाता है, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो इतने सारे मंच पे सम्मानित, और आप सभी सम्मानित लोग हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में इतने साल दिए। इन्होंने बताया, दयाल भाई से मैं आज मतलब 5 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई, मैं उनका फैन हो गया, और बड़ी अच्छी बातचीत हुई मेरी, सिर्फ 2 मिनट के मतलब दौरान उन्होंने अपने बारे में बताया। और पूनम दीदी से तो खैर वो बिल्कुल ऐसा रिश्ता है कि अगर कोई सुख दुख हो तो मैं वहां पहुंच जाता हूं, मुझे अगर पता चल जाता है कुछ भी, तो हम सब एक परिवार हैं, परिवार की तरह हैं। और इस आधुनिक युग में हमें उन चीजों को लेकर चलना है, परिवार को, चाहे हम जहां जिस संस्था में जुड़े हुए हैं, उन सबको हमें परिवार की तरह समझना है। एकजुट होकर जब हम रहेंगे, सुख दुख में साथ होंगे, और परिवार अगर आपका साथ है तो आपको मन की शांति मिलेगी। जैसे मैं आज यहां, कल यहां आया था, तो अपनी वाइफ को मैंने बताया कि भाई मैं वहां पे पहली बार जा रहा हूं, उनको ये पता है कि मैं यहां जुड़ा हुआ हूं, दिल्ली मेट्रो में वो कार्यरत हैं, और उन्होंने बताया कि हमारी मेट्रो की टीम हर साल यहां आती है, 50 लोग यहां पे दिल्ली मेट्रो से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, तो क्योंकि भाई जो लोग नौकरी करते हैं उनको छुट्टी तो ज्यादा मिलती नहीं है। वैसे एक भाई हमारे मेट्रो से आए हुए हैं, जो यहां अभी माइक के पास बार बार आते हैं, भाई का नाम बोल रहा हूँ, विवेक नाम है इनका, तो विवेक जी से भी मैं यहीं आके मिला हूं। तो ये आपका इतना बड़ा परिवार है, और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप करते रहते हैं समाज के लिए, इस पूरे भारत देश के लिए नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करूंगा, क्योंकि पूरे विश्व में आपकी संस्थाएं हैं, और उस जमाने से जिस जमाने में हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से दयाल भाई और सब लोग मिलके काम करें, जितनी भी बहनें तो, और आपका एक अभियान था नशा मुक्ति के खिलाफ जो यहां से गाड़ी दिल्ली के तरफ भी आई, और मैंने अपने पूरे क्षेत्र में मैं खुद उस गाड़ी के साथ चल के जाता था और सभी RWS को वहां के मेंबर्स को बुला के बिठाता था और सबको इकट्ठा करने के बाद हम वो डेमो चलवाते थे गाड़ी का। पूनम दीदी ने वो गाड़ी भेजी थी हमारे पास, तो मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी आ गई और हमने किसी के साथ भेज दिया जाओ दिखा दो। तो अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं और जो आधुनिक युग में जो भटकाव है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के अंदर, हम साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, हम साथ में खाना नहीं खाते हैं, हम त्यौहार नहीं मनाते, बहुत कुछ चीजें हमें बदलने की आवश्यकता है। और अगर जिम्मेदारी के साथ हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, थोड़ा समय उन चीजों से निकालकर हम, जैसे किसी का जन्मदिन है परिवार में तो हम एकजुट हो मतलब होते हैं, बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो पारिवारिक जीवन का और आधुनिक जीवन में अगर हमें अंतर करना है तो हमें सिर्फ यही देखना है आगे कि किस तरीके से जो हमारी पुरानी संस्कृति चलती आई, जो हमारी बाबा और दादा और मतलब बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर जाएं। आज पूरे देश में जब रामलीला का समय होता है तो रामलीला मंचन होता है, वो मंचन इसलिए होता है, हर साल होता है, जन्माष्टमी का मतलब उत्सव मनाया जाता है, आपके सेंटर पे भी होता है, मैं हर साल वहां भी जाता हूँ दीदी के पास, तो ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं कि भाई हमारी भारतीय ये संस्कृति है और आपको इसको लेकर चलना है, ताकि आधुनिकता के साथ साथ उसे उन मूल्यों का पता हो कि किस कल्चर से हम लोग आते हैं, किस भावनाओं के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े रहे। अगर पहले हमारे पिताजी घर में आते थे तो हम सब उनके पैर छुआ करते थे चाहे वो कहीं से भी आए, लेकिन आज वो संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हम गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि, और यहाँ तो जितनी भी मतलब बहनें हैं हमारी, मैं उन और सभी बहुत अच्छे घरों से हैं, इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं सबसे पहले आप सबका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप सब ने, ये पूरी टीम ने जो पूरे विश्व में एक शांति का संदेश मतलब फैला रहे हैं आपके माध्यम से, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सब तो बहुत छोटे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की कि क्या है, अभी इस उम्र में भी अगर हमारे अंदर लगाव है समझने की तो मैं चाहता हूं कि इसको हम कैसे बढ़ाएं, कैसे और युवाओं को हम इससे जोड़ें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर हमारी कोई संस्था है दिल्ली नगर निगम की, हम कैसे, क्योंकि लोगों में अभी इस युग के अंदर एक पैसा के पीछे मतलब जो मतलब भागने की मतलब उनको ये नहीं पता कि कुछ नहीं होगा इससे, उसको आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो मन में शांति नहीं है। अक्षय कुमार जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई फिल्म की एक शूटिंग के दौरान मैं एक घर में गया, किसान, गरीब किसान के घर में जहां शूटिंग हो रही थी किसी गांव में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें चाय पे आमंत्रित किया और हम छोटी टीम के साथ उनके घर पे चाय पीने गए तो वहां पे जैसे हम बैठे होते हैं और घर का माहौल सामने होता है, एक दूसरे से सब बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उसको देख रहे थे बहुत गंभीरता से। उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि जितनी खुशियां मैंने उस घर में देखी उतनी खुशियां शायद मेरे घर के अंदर भी नहीं है। तो आप पैसे से खुशियां और मन की शांति तो अर्जित नहीं कर सकते, ये तो सत्य है, और इसको सबने कोरोना काल में भी देखा, जब पूरे विश्व में संकट का एक दौर था तो मन की शांति, जो डर रहे थे, घबरा रहे थे, शायद वो इस दुनिया से चले गए, ऐसा नहीं था कि वो अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन मन की शांति और अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। हम जिस फील्ड के अंदर हैं राजनीति में, बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, तो मेरे जुड़ने का यही मकसद, मैं समय तो कम दे पाता हूं लेकिन मन कई बार बहुत परेशान हो जाता है, ऐसा मन करता है सब कुछ छोड़ दें और छोड़ के बिल्कुल एक ऐसी जिंदगी जिए जहां शांति हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे आप लोगों से, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और पहली बार मैं आया हूं, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, अभी और भी वक्त है, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पे बुलाया, सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संस्था में आकर कैसे उन्होंने सीखा कि ये एक वैश्विक परिवार है और इस परिवार में कैसे मूल्यों की वृद्धि होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगे के कलाकार हैं श्रीधर कामले जी, लोक शाहिर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त महाराष्ट्र शासन, एमए बीएड शिक्षित तथा 38 वर्ष 6 मास के अनुभवी शिक्षक, वर्तमान में सिल्वर जुबली प्रशाला वार्षी में कार्यरत, कला साहित्य संस्कृति एवं समाज सेवा क्षेत्र में सक्रिय योगदान। उनका बहुत बड़ा बायोडाटा है, उसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। अवति भवती पुस्तक के लेखक, उत्कृष्ट सूत्र संचालक, प्रभावी वक्ता, कवि एवं अभिनेता, साहिरी जलसा कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक, अनेक लघु फिल्म एवं वृत्त चित्रों के निर्माता, सांस्कृतिक विभाग प्रभाग, श्री भगवंत महोत्सव वार्षिक, सामाजिक कार्य में रत शांति समिति सदस्य, सोलापुर जिला नाट्य कलाकार मंच के उपाध्यक्ष, फूले शाहू आंबेडकर विचार प्रतिष्ठान वार्षिक के अध्यक्ष, सामाजिक सद्भाव साक्षरता अंधश्रद्धा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, निर्मूलन रक्तदान ग्राम विकास एवं वंचित वर्ग के उत्थान हेतु सतत कार्य। उनका विशेष उपलब्धि ये है 61 बार जोरदार ताली बजाएं स्वैच्छिक रक्तदान, अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन, विद्यार्थी एवं सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व, छात्रवृत्ति एवं छात्र अधिकारों हेतु सक्रिय कार्य, आदर्श शिक्षक पुरस्कार 1996 ताली बजाइए, 2002-2010 गुणवंत शिक्षक पुरस्कार, 2016 सामाजिक सेवा साहित्य सेवा एवं सांस्कृतिक जीवन गौरव सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अभिनय और रंगमंच की कला को दिया जिन्होंने नया आयाम, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट थिएटर्स के वाइस प्रेसिडेंट श्रीधर कामले जी को हमारा सादर प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय भाई जी, आदरणीय बहन जी, सबसे पहले मैं इस सभागृह में जो देश के विविध क्षेत्रों से आए हुए हम सभी कलाकार, हम सब कलाकारों को आपने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए हम सभी की ओर से मैं आपको सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप भी बजाए। आज का जो अपना विषय है, आधुनिक संस्कृति के आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला। संस्कृति का वास्तविक अर्थ, संस्कृति केवल त्योहार परंपरा वेशभूषा या रीति रिवाज नहीं है। संस्कृति हमारे व्यवहार विचार जीवन जीने की पद्धति का नाम है। धन्यवाद क्षमा सम्मान संवाद ये सभी संस्कृति के रूप है। संस्कृति मंदिरों पुस्तकों में और स्मारकों में नहीं बल्कि परिवारों के आचरण में जीवित रहती है। संस्कृति विरासत में नहीं मिलती, उसे हर पीढ़ी को अपने आचरण से जीवित रखना पड़ता है। आधुनिकता और परिवारों की बदलती तस्वीर जब हम देखते हैं तो तकनीक में तो दुनिया को हमने करीब लाया है, लेकिन मनुष्यों के बीच दूरी बढ़ाई गई है। आज परिवार एक घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन अनेक बार भावनात्मक रूप से अलग अलग दुनिया में सभी जीते हैं। संवाद की कमी, समय का अभाव और बढ़ता व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करता है। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि आज हमारे पास संवाद के अनेक माध्यम हैं, लेकिन बातचीत के लिए समय कम होते जा रहा है। भारतीय परिवार व्यवस्था की वैश्विक प्रासंगिकता को जब हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति ने सदैव परिवार को समाज की मूल इकाई माना है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव जैसी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। परिवार केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और जिम्मेदारी का विद्यालय भी है। आज के दिनों में बच्चों को सुविधा नहीं बल्कि संस्कार चाहिए। आज माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है समय की, संवाद की, प्रेम की और मार्गदर्शन की। इसलिए बच्चों को संपत्ति से अधिक अपने माता पिता की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसमें कला और संस्कृति, जो संस्कृति है इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, कला समाज में संवेदनशीलता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को जागृत करने की शक्ति रखती है। साहित्य, संगीत, नाटक, लोक कला और कविता ये सभी ने सदैव समाज को दिशा देने का कार्य किया है। इसके अनेक उदाहरण है, अनेक संत महात्मा जिन्होंने अपना लेखन किया है। इन सभी ने कला को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया है। अब हम सब कलाकारों की जिम्मेदारी ये है कि आज कलाकारों और रचनाकारों का प्रभाव लाखों लोगों तक पहुंचता है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने इस प्रभाव को अधिक व्यापक बना दिया है। प्रश्न ये है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, केवल मनोरंजन या जीवन मूल्यों की प्रेरणा। इसलिए मैं ये विचार रखना चाहता हूं कि एक कलाकार केवल दर्शकों का मनोरंजन नहीं करता, वह समाज की चेतना को भी दिशा देता है। आध्यात्मिकता और पारिवारिक सौहार्द। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से दूर जाना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जब मनुष्य स्वयं के भीतर शांति विकसित करता है तब उसके संबंध भी मधुर होते हैं। परिवार में प्रेम, धैर्य, संवाद और सम्मान का आधार आंतरिक शक्ति है। इसलिए हमें यहां संदेश मिलता है कि स्वयं को पहचानो, मन को शांत करो, संबंधों को मजबूत बनाओ, जीवन में मूल्यों को अपनाओ। वर्तमान समय में हम सभी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन, तकनीक और मानवीय संबंधों के बीच संतुलन, प्रगति और मूल्यों के बीच संतुलन रखना जरूरी है। परिवार सुरक्षित रहेगा तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी, संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनेगा। इसलिए मैं सभी कलाकारों को ये बताना चाहता हूं कि कला मन को स्पर्श करती है, संस्कार जीवन को दिशा देते हैं और आध्यात्मिकता उस दिशा को प्रकाश प्रदान करती है। चलो हम सभी कलाकार मिलकर अपने अपने में जो कला है उस कला के माध्यम से अपने परिवार को और समाज को बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
बहुत देर से हम सभी महानुभवों का वक्तव्य सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस स्थान पर हैं वहाँ शांति और शक्ति कैसे मिलती है योग के द्वारा, तो हमारी कुसुम दीदी शांति की अनुभूति और अंतर मन की गहराई का कराएंगी एहसास। आइए स्वागत करें दीदी का, जो कराएंगी हम सबको मधुर मेडिटेशन का एहसास। हम सब अरावली पहाड़ियों के बीच छुपे हुए सुंदर स्थान ज्ञान सरोवर और आज की ये सुंदर बेला, संध्या बेला, धुमा शाम का समय और बहुत सुंदर सजी हुई आज की ये मंच, जिस मंच पर हमारी त्यागी तपस्वी दीदियां अथवा देवियां उपस्थित हैं, साथ में भाइयों को और भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए सभी भाइयों को सबसे पहले मधुर मधुर ओम शांति। तो अभी हम सब कुछ क्षण के लिए उस जगत नियंता महान कलाकार परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के सृजनहार नव निर्माण करने वाले, हम सब आत्माओं को अपनी शक्तियों से भरपूर करने वाले, तो अभी हम सब चलते एक सुंदर अंतर जगत की यात्रा की ओर। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर देखेंगे कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा प्रकाश पुंज जागती ज्योति आत्मा हूं। मैं एक सूक्ष्म यात्रा की ओर आगे बढ़ रही हूं। इस साकार मनुष्य लोक से भी पार सूर्य चांद तारागणों से भी पार एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में पहुंच रहे जहां मेरे पिता वो तीज प्रकाश पुंज चमक रहे, मैं आत्मा उन प्रकाश की किरणों में समा रही हूं। उनसे निकल रही प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को प्रकाशित कर रही, अब मैं अपने आप को उन प्रकाश की किरणों से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। शांति के सागर पिता परमात्मा से मेरा मिलन हो रहा है।
मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप बन रही हूं। पिता परमात्मा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाहित हो रही, उस शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही, मैं आत्मा एकदम डीप साइलेंस का अनुभव कर रही। मेरे द्वारा उस शांति की किरणें निकलकर पूरे विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ रही, प्रकृति के पांचों तत्वों को उस शांति की किरणें बहुत शांत कर रही, पूरे विश्व का वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। मैं आत्मा उस शांति के सागर की लहरों में खो गई हूं। एकदम भरपूर शांति का अनुभव कर रही, आत्मा उस पिता परमात्मा को अपलक निहार रही हूं। वाह मेरे पिता, आप कितने महान हैं, आपने मुझे अपना सत्य परिचय देकर सद ज्ञान देकर अनेक विशेषताओं से भरपूर किया है। मुझे सर्व कलाओं से, सर्व शक्तियों से, श्रृंगार किया है। आपके द्वारा मिली हुई ये विशेष शिक्षाओं को, इन विशेषताओं को सदा ही अपने जीवन में जोड़कर अन्य आत्माओं का भी जीवन विशेष बनाएंगे। आपके साथ मददगार बन इस धरा को स्वर्ग बनाने में विशेष सहयोग प्रदान करेंगे। उस पिता से मिलन मनाते हुए अब मैं आत्मा पुनः वापस आ रही हूं। ओम शांति, ओम शांति।
सभी को गहन शांति की अनुभूति हुई और कुसुम दीदी को हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे सुदेश दीदी जी। सुदेश दीदी एक स्पिरिचुअल लीडर है, राजयोग का टीचर है, जिन्होंने पिछले 65 वर्षों में दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। दीदी जी के लिए करतल ध्वनि करेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के यूरोपियन डायरेक्टर है। ब्रह्मा कुमारीज जर्मनी के अब डायरेक्टर है 1996 से। जर्मनी स्थित सेमिनार हाउस मोरिंगेन रिट्रीट सेंटर के अब डायरेक्टर है 2016 से। 2023 में 81 वर्ष की आयु में आपको ज्ञान सरोवर के सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 1942 के जन्म के बाद एक अनोखी बात जरूर शेयर करेंगे। 16 वर्ष के अल्पायु में आप गर्ल्स स्कूल के हेडमिस्ट्रेस बन गए। उसके पश्चात दिल्ली स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए डिग्री प्राप्त किया। 2012 में आपको तेहरान के धर्म और समकालीन जागृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2018 में आपको जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा बर्लिन में शांति के लिए धर्मों की जिम्मेदारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी वर्ष आपको लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भारत गौरव पुरस्कार, करतल ध्वनि करें, भारत के अनसंग हीरोज को समर्पित से सम्मानित किया गया। दिव्य अनुभव और अनमोल आशीर्वाद आशीर्वचनों से होगा जीवन का श्रृंगार। पूज्य सुदेश दीदी के वरदानी वचनों का है हम सबको बेसब्री से इंतजार। सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद। मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही बहने और भाई को हूँ, या भाई भाई कहूं या चैतन्य हीरो का हार कहूं, इनका परिचय तो आपने पहले से ही सुन लिया है। हर एक की अपनी विशेषता भी आपने सुनी और अनुभव की, और सामने बैठे हुए धैर्य मणियां, चैतन्य चमकते सितारे, आप कितने उत्सुकता से सरसने से शांति से यहाँ बैठे अपना समय दे रहे हैं। अपने घर में आप आए हैं, घर में बैठे इसलिए आराम से बैठे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार परिवार है, फिर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वरीय ज्ञान विद्या सत्य ज्ञान सच्चिदानंद परमात्मा सतगुरु से मिलता है, रोज शिक्षा मिलती है, स्कूल दिन रात खुला रहता है और अमृत वेला 4 बजे खुल 3 बजे ही खुल जाता है, ऐसा स्कूल कोई देखा तो 3 बजे से खुल जाता है और उस समय का जो आनंद और रस होता है, वो अमृत पीने का प्याला पेड़ की जो मस्ती होती है वो हस्ती बना देती है, एक नशा चढ़ा देती है कि हम किसकी संतान है, हम चैतन्य चमकते सितारे हैं, प्रभु को बहुत प्यारे हैं और ये परिवार है हमारा, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूं कि ये ईश्वरीय कला केंद्र है, डिवाइन कला केंद्र है, जहां पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, परिस्थितियों को पार करने की कला सिखाई जाती है, समस्याओं को हल करने की कला सिखाई जाती है और बैठे बैठे उड़ने की कला सिखाई जाती है, उड़ते उड़ते स्थिर हो जाने की कला सिखाई जाती है। ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है और प्रकाश भी है तो सकाश भी है, शक्ति भी है। वंडर तो ये है कि यहाँ का कलाकार स्थापन करने वाला और कला केंद्र का निमित्त सेवा केंद्र, जहाँ पर निराकार ने कलाकार बनकर अभिव्यक्ति की। कलाकार का मतलब क्या? अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना, अपने मन के हृदय की फीलिंग को मिट्टी से घड़ा बना देना, मिसाल के तौर पर। अब मिट्टी को घड़ा बनाया, ठंडा पानी मिला, शीतलता मिल गई, पत्थर को हीरा बना दिया, चैतन्य पत्थर को चैतन्य मूर्ति जैसा बनाकर पूजने बना दिया, वो भावना की बात। तो मेरा कहने का मतलब है, अब कला क्या है, आप तो सब कलाकार बैठे हैं, मतलब एक उत्साह भरे उमंग जीवन में आवे, संगठन का बल मिले, परंतु परिवार में रहते हुए हमारा सबका जीवन एक आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, परमात्मा की आर्ट दिखाई पड़े। अब भगवान साहब सोचो, परमात्मा के घड़े हुए देवात्माएं कैसे होंगे, पिता परमात्मा कलाकार की मूर्तियां कैसी होंगी, वो साधारण मूर्तिकार की मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, पर ये मूर्ति भगवान के मन के अंदर बसती है और भगवान कलाकार की मूर्ति हमारे अंदर बसती है। वो प्रेम की मूर्ति है, वो पवित्रता की मूर्ति है, वो दिव्यता की मूर्ति है, वो सत्यता की मूर्ति है, कल्याण की मूर्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंद, कांटे को फूल बनाने वाला है, पत्थर को हीरा बनाने वाला है, मुर्दे में जान भरने वाले है। आज के दुखी संसार में वो एक सीक्रेट ये है कि वो जैसे हम ये लक्ष्य है ना, परिवार में कैसे गुणों की वृद्धि हो, सुंदर परिवार कैसे बने, आश्रम की तरह कैसे बन जावे, गुण की वृद्धि कैसे हो, तो भगवान निराकार जिस अपना अनुभव कराते हैं, हर संबंध का अनुभव, सीक्रेट बता रही हूं, आप सब अनुभव कर सकते हो। सीक्रेट कुछ नहीं है, पर सीक्रेट है उनकी महिमा। हम दिन भर गाते हैं भक्ति में, सदियों से गाते चले आए, 2500 ईयर से, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही प्रियतम तुम्ही सखा, और तुम्ही बालक भी हो मालिक भी हो, तुम्हारे पास जीवन कुर्बान जाऊं समर्पण कर लूं, ये प्रेम का फल है, बल है। तो परम पिता परमात्मा स्वयं निराकार से साकार बन करके अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो रोज मधुर मुरली बजा रहे हैं, और इस मुरली के स्वर में, मुरली तब बजती है तो बांस की लकड़ी, पर उसमें कुछ भरा हुआ हो ना मिट्टी, बजती नहीं है खाली। तो भगवान हमारे परिस्थितियों को देखते हुए हृदय में सिर्फ प्रेम क्षमा और दया भर करके, हृदय को स्वच्छ रख करके सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मीन्स 100% संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और परिवार की मर्यादा में कैसे रहना है। वसुदेव कुटुंबकम का ये नारा है, ये प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। संसार परिवार है मेरा, वो तो पीछे बात, पहले तो मेरा जो अपना परिवार है, जो इस जीवन का परिवार है, इस संसार में मैं आई हूं तो अपना परिवार, उसमें कितना आपस में प्यार है, संबंध कितना है, सम्मान कितना है, स्नेह कितना है, स्वीकृति कितनी है, एक्सेप्टेंस कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है, धैर्यता कितनी है, शुभ भावना कितनी है, सहयोग और स्वीकार करके उनका धैर्य से और प्रेम से श्रृंगार करें, ये गुणों की माला पहनाएं अपने परिवार को। एक बगीचे का माली फूलों को तैयार करता है, घर सुंदर बन जाता है, बगीचा सुंदर बन जाता है, फूल की माला बना देता है, प्रभु के गले का हार बना देता है। तो परम पिता परमात्मा स्वयं परिवार संबंध जोड़ते हैं आके, परिवार का मतलब ये है संबंध। भाई परिवार में एक एक मेंबर और आया, बेटी आई, संबंध हो गया, बेटा आया, संबंध जुटा, शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ संबंध जुटा, सो दोस्त स्कूल में गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जॉब किया तो साथ में काम करने वाले हुए, संबंध की बात है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे ये संबंध, कलाकार एक्सप्रेस करने वाली तो आत्मा है ना, चंद्रिका दीदी जी ने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया कि आत्मा की शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में जब एकता है, तीनों के अंदर संबंध पक्का है, तो फिर ये राजा दशरथ बड़े प्यार से राज करेगा और राम राज आता है। दशरथ है ये राजा, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, और उसके साथ तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। तो वो समझ देता है कि मन को मंत्रा नहीं बनाओ, मंत्रा में ईर्ष्या, मंत्रा में द्वेष भाव, मंत्रा में फिर फ्रिक्शन डालने का संस्कार। तो क्यों, क्या कही, किसने कही, कब कही, कैसे हुई, कई ने राम राज आने में 14 साल डिले कर दिया। तो हमारा घर एक मनमन मंदिर बन जावे, घर आश्रम बन जावे, सृष्टि स्वर्ग बन जावे, ये है परमात्मा आकर के जीने की कला सिखाते हैं। तो कला का मतलब साधारण चीज को अच्छा बन, सुंदर बना देना, वैल्यूबल बना देना। छोटी छोटी चीजें पत्थर चुन करके जो शंख होते हैं छोटे छोटे, उनकी सुंदर अगरबत्ती स्टैंड बना दे। यानी कलाकार का मतलब यही है, जो कोई चीज बेकार हो गई है उसको इतना सुंदर मूल्यवान बना दे। समय की जो सीमा है, क्योंकि आप लोग को बैठे 2 घंटे से ज्यादा हो गया है और भूख भी लगी होगी, तो परंतु ये कला मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो हमारी स्कूल टीचर एक बास्केट लेके आई, तब वर्कशॉप का नाम नहीं था, वो बास्केट में इंजेक्शन की बोतल, मूंग वो खाते हैं ना, मक्की का छिल्ला, मक्की तो मक्की का बाकी बचा हुआ फेंकने वाली चीज, कोका कोला के डब्बे, वो पता नहीं रबिश उठा के ले आई। हम अपने कहा हमने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखाया भी है, ये बहन जी आज डांटेगी हमको कि हमने स्कूल को गंदा किया है, हमने तो कुछ किया नहीं। उसने कहा डरो नहीं, आज मैं आपको विशेष बात, विशेष कुछ इनाम देने आई। हमने कहा ये हमको खाली उसके डब्बे में कोका कोला के डब्बे, माचिस के डिब्बे, ये कोई इनाम मिलता है? उसने कहा नहीं, अखबार भी था, सब चीजें थी, सामग्री थी उनके साथ रफ का। ये जो मैं चीजें लेके आई हूँ ना, आप मिल करके चार चार पांच पांच बहने कुमारियां, इनको कुछ एडजस्ट करो, कुछ इसका बनाओ, और एक साथ में पॉपकॉर्न भी लेके आई थी, बास्केट थी, एक किक्कर की झाड़ी लेके आई थी। हमने समझा पता नहीं किसको कांटा, न किसने ठीक काम नहीं किया, तो वैसे चमाट नहीं मारेगी, काटा मारेगी। उसने कहा कुछ डरो नहीं, आप इसको यूज करो। सबने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, इनाम किसको मिला? वो जो कांटों की किक्कर की झाड़ी थी, उस पर वो जो मक्की के फूले जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जोड़े, वो एक सुंदर वृक्ष बन गया। तो कला क्या है, जो चीज दुख देने वाली है उसको भी सुंदर बना दे। तो आज ये संसार दुखमय संसार बन गया है, हर एक एक दुख को, दुख की मन से भी दुख, वाणी से भी दुख, कर्म से भी दुख, दुखों का ही लेन देन का व्यापार कर्म फिलॉसफी बन गई है। तो परमपिता परमात्मा अपने साथ संबंध जुड़ा के अपने गुण, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, कल्याण की भावना सबसे अच्छी बात है, गहराई से सिखाते हैं, प्रेम से सबके साथ रहो, पर दुखी क्यों हो उसका सीक्रेट बता देता। जो प्रेम था ना, बजाय अच्छी चीज के खराब चीज को अच्छा बनाने के तुमने अच्छी चीज को खराब कर दिया। भाई कैसे, मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो तो बड़ा शैतान है, लड़की बड़ा तंग करती है, मुझे तो बड़ी चिंता होती है। अब आप देखो कैसे करूं उनके साथ सद्भावना। तो परमात्मा बताते हैं, आप जो गुण मैं सिखा रहा हूं ना, उन गुणों को गुण ही रहने दो, उसमें गुण ना लगने दो, कीड़ा ना लगने दो। तो कीड़ा ना उसमें लगने दो, कीड़ा पीड़ा देता है। तो क्या हो गया है, दुख क्यों हुआ है? विस्मृति हो गई कि हमारा रिश्ता भाई भाई और भाई बहन का है। तो परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं, और जो प्रेम था वो मोह में बदल गया। इसलिए भगवान का फाइनल शब्द है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो स्मृति दिलाते हैं अपने स्वरूप की, जिससे आत्मा सुंदर श्रेष्ठ बन जाती है। अब यही पानी का गिलास है, ये इतना स्पष्ट है कि मैं अपनी शक्ल देख सकती हूँ, इतना ठंडा है, आराम मिलता है बोलते हुए गले को, ठीक है ना? और इतना इजी है कि मूवमेंट करती हूँ, मूवमेंट है इसमें। क्लीन है कि मेरी साड़ी साफ कर देगा मैली, अगर जरा सी मिट्टी पड़ गई पियेंगे तो मैं हेल्दी रहूंगी। मिट्टी मिल गई, यही पानी पीऊंगी, हेल्थ मिलेगी। अपोजिट हो गया ना, थोड़ी और पानी मिला मुझे अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी, इसमें ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं? थोड़ी और मिट्टी मिल गई, कपड़ा साफ करेगा? ऐसे मिट्टी मिलते मिलते इसका नाम बदल जाएगा, कीचड़। अब ये तो इतना इजी है कि मैं हाथ डालूं और निकालूं, चिपक चिपक नहीं रहा। और मिट्टी मिल गई, अब वो मेरे को मेरा हाथ छोड़ेगा? पकड़ लेगी कीचड़ मुझे। तो कहते क्या करें बहन जी, ग्रस्ती तो कीचड़ है। कीचड़ किसने बनाया? वो प्रेम जो था उसको मोह में बदल दिया। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, ज्ञान को समझो तो एक कला केंद्र जो है, इसमें आत्मा इस केंद्र में स्थित होकर के बुद्धि से ज्ञान लेगी और कर्म से कला प्रदर्शन करेगी। तो ऐसे गुणवान बनने के लिए आप सब आर्टिस्ट तो है ही हैं, पर एक कला ये और सीख के जाएंगे तो संपूर्ण चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, सूर्य की तरह शक्ति देने वाले और चंद्रमा की तरह प्रकाश देने वाले, परिवार में शीतलता देने वाले। तो आपका मन बन जाएगा मंदिर, घर बन जाएगा आश्रम, सृष्टि बन जाएगी स्वर्ग। तो ऐसे स्वर्ग बनाने वाले कलाकारों को मोस्ट वेलकम, साथ साथ बधाई कि आप ये टाइटल लेके जाएंगे, यहाँ से कला सीख के जाएंगे। ओम शांति।
दीदी ने गुणों की माला कैसे पहने वो बताया, और दीदी ने बहुत ही बारीकी से कला के बारे में बताया कि कैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना देते हैं। तो दीदी जी के लिए बहुत जोरदार करतल ध्वनि। हमारे अनिल भाई जो गांधीवी सेंटर पे जाते हैं, हमारे आदरणीय रमेश भाई उषा बहन की पालना लिए 52 वर्ष से वो इस ईश्वरीय ज्ञान में है, और वो बहुत ही सुंदर वक्ता भी हैं। और इस संस्था का 1983 में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें भाई जी का बहुत योगदान रहा। आर्ट एंड कल्चर विंग के प्रथम फोल्डर उन्होंने बनाए, बच्चों के बाबा पीस वैल्यूज पर आधारित पुस्तक, और खास करके रमेश भाई जी के जो पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग एवं संगम युग का कारोबार पवित्र धन मुंबई में ही प्रोफेशनल क्वालिटी में प्रिंटिंग आदि किए, और वो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और धन्यवाद देने के लिए वो आ रहे हैं। सफलता के इस सुंदर सफर में सबका रहा अनमोल सहयोग और प्यार। राजयोगी अनिल भाई अब व्यक्त करेंगे हृदय से आभार। अनिल भाई,
ओम शांति। ओम शांति। मैं सर्वप्रथम हमारे अति प्राण प्रिय परम पिता श्री परमात्मा, जो हमारे परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है, उनके हम तह दिल से, प्रेम भाव से, हृदय के अंतकरण से शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया और आभार प्रकट करेंगे। क्योंकि परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हर परिवार जहाँ खुशहाल है, और ऐसी देवी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनाने वाले हैं ब्रह्मा बाबा को। इसलिए एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। तो ब्रह्मा बाबा हमारे निराकार शिव बाबा के माध्यम बने, भागीरथ बने, और जिन्होंने हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की संस्थापक है, आदि पिता है, और उनको हम बहुत बहुत हृदय के प्रेम भाव से, अहो भाव से, ग्रेटिट्यूड से हम धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, शुक्रिया करेंगे। और आप सब भी करदल ध्वनि से पिता श्री ब्रह्मा बाबा के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने 380 दादियां, जिससे पहले भी बताया, 400 दादियों का उन्होंने त्याग तपस्या सेवा कराई, ऐसी दादियां आज अव्यक्त रूप में है, इसी दादियों के भी त्याग तपस्या सेवा के लिए, और आज जो हमारी संस्था 140 कंट्रीज में स्थापक के रूप में सभी की जीवन परिवर्तन करती है ज्ञान और योग के द्वारा, तो ऐसी दादियों को मैं सत सत नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो दादियों के लिए भी हम बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करेंगे। और हमारी अभी भी सुदेश दीदी हमारी दादी के स्वरूप में ही है, मम्मा के स्वरूप में है, अभी भी उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की जो फरिश्ता रूप में है, सुदेश दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज सुदेश दीदी सर्व जैसे कि साकार मूर्ति है ब्रह्मा बाबा की, ऐसी भाषणा मिलती है, दादियों की भाषणा मिलती है, इसलिए सुदेश दीदी को बहुत बहुत दिल से नमन करता हूँ, आभार वंदना भी करता हूँ। हमारी चंद्रिका दीदी तो हमारी जैसे कि माँ भी है, और जैसे कि उनकी एक सेवा की प्रेरणा स्रोत है, उनकी जो उमंग उत्साह है वो जैसे कि लोगों को पंख उड़ा देती है। तो मेरी यही एक नम्र विनती रहेगी कि जो बॉम्बे में बॉलीवुड है वो वहां आकर के एक उन्होंने गवर्नर हाउस में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था आर्ट एंड कल्चर का, मैं वापस पूर्ण उनको नम्र निवेदन करूंगा कि वहां आकर के पूर्ण सेवा करें बॉम्बे में आकर के, और चार चांद लगावे, उनके संकल्प की सिद्धि होती है, वो संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्मा है और वरदानी आत्मा है। ऐसी चंद्रिका दीदी को मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करूंगा, और सभी के दिलों में वही उमंग उत्साह भरती रहे और हम चार चांद लगावे आर्ट एंड कल्चर उनकी सेवा में। हमारे करुणा भाई जो हमारे विशेष सचिव है और मुख्य वरिष्ठ भ्राता है ब्रह्म कुमारी के, मैं उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करूंगा। इन्होंने पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी चैनल की स्थापना की, खास करके शिवानी दीदी जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने निमित्त बना करके वो पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग ब्रह्म कुमारी द्वारा घर घर में मूल्य निष्ठ समाज की कैसे परिवार में परिवर्तन होवे, परिवार में स्नेह और मूल्यों द्वारा एक स्वर्ग आश्रम बने, वैसे उन्होंने विश्व के सारे विश्व में उन्होंने परमात्मा का संदेश मिला है। जैसे करुणा भाई का भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करेंगे। और मैं हरेक जो भी हमारे महानुभव आए हैं, जो मधुर वाणी ग्रुप, जो हमारे मधुर वाणी ग्रुप ने मधुर ध्वनि से हमारे जैसे कि महका दिया हमारे सारे प्रोग्राम को, सम्मेलन को, इसलिए मधुर वाणी ग्रुप को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारी बीके बहनों ने जो स्वागत किया, इन्हों का भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करूंगा। और साथ में मुंबई से जो डांस ग्रुप की बहनें आई थी, उन्होंने बड़े कला बड़ी सुंदर डांस के द्वारा, नृत्य नाटिका के द्वारा उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वागत किया, उनका भी बहुत बहुत दिल से हम आभार प्रकट करेंगे। हमारी प्रेम दीदी ने तो बहुत ही सुंदर शब्दों में सभी का दिल से अहो भाव से अभिवादन भी किया, आभार भी प्रकट किया और अभिनंदन भी किया। ऐसी प्रेम दीदी के लिए जोरदार तालियां से स्वागत करिए। प्रेम दीदी रियली अपने प्रेम स्वरूप से सभी का बहुत दिल से सुंदर अभिवादन करती हैं। अध्यक्ष में अभी पूनम दीदी जो हमारी बहुत ही जैसे कि बहुत स्पष्ट सेवा करती है, उन्होंने बहुत बहुत वीआईपी की वहाँ कलाकारों की सेवा की। जैसे कि अभी भी उन्होंने बताया तपस्विनी बहन ने कि हमारी एक वरिष्ठ कलाकार की सेवा की, आज भी वो भीलेपाला में स्टूडेंट है ग्रेसी सिंह। तो ऐसे अनन्य विशिष्ट कलाकारों की सेवा करती रहती है, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं बहुत दिल से प्रकट की, इसके लिए उनका भी हम धन्यवाद प्रकट करेंगे। और मैं दयाल भाई का भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भावनात्मक रूप से हमारी चेयरपर्सन हृदय मोहनी दादी जी, हमारे रमेश भाई जी, उषा दीदी जी को भावनात्मक में से याद किया। और ऐसे उन्होंने बहुत ही दिल के जैसे कि बहुत कोमल है और सभी को बहुत प्यार स्नेह और बहुत ही दुआएं देने वाली आत्माएं, उसको बहुत बहुत दिल से हम दुआएं भी देंगे और हमारा हृदय के भाव भी आभार प्रकट करेंगे। अभी हमारे जो भी मेहमान आए थे, इन्होंने भी बहुत सुंदर रीति से अपनी भावनाएं प्रकट की थी। आदरणीय भगिनी रश्मिका उपाध्याय जी ने, उन्होंने बहुत अच्छा एक अनुभव बताया कि बाबा कैसे हमारे रक्षक के रूप में रहे हैं। तो ऐसी सुंदर भावनाएं अभी भी उनमें है और सदा बाबा उनकी रक्षा करता रहेंगे और आगे भी वो बढ़ती रहेंगी ज्ञान योग में। हम उनका भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करेंगे। आदरणीय भ्राता जल चौधरी जी जो जिन्होंने बताया कि संस्कृति जो है, पारिवारिक जो है, वो मूल्यों के आधार पर ही बन सकती है। ऐसे मूल्यनिष्ठ समाज के लिए मूल्यों को जीवन में अपनाना चाहिए, उसके लिए भी हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। हमारे आदरणीय भ्राता श्रीधर कांबले जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से अपना भाषण प्रकट किया और ये राजयोगिनी कुसुम दीदी जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर ध्यान अपना राजयोगा मेडिटेशन की कमेंट्री कराई, सबको परम शांति की सुंदर अनुभूति कराने के लिए हम कुसुम दीदी जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करेंगे। और भी जो भी महानुभव ऑन द डायस पर हैं, मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। समय की सीमा के कारण जिसका भी नाम रह भी गया हो तो उनको नाम सहित मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। खास करके हमारी मंच आसीन जो भी है, जो स्टेज कोऑर्डिनेटर है तपस्विनी बहन, बहुत सुंदर सुचारू रूप से उसने स्टेज का कोऑर्डिनेशन किया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में जो बिहाइंड द स्टेज जो है मुंबई की टीम में शीतल दीदी है, उनकी टीम को भी धन्यवाद। और खास करके हमारे ज्ञान सरोवर के जो भी परिवार है, उनके हर डिपार्टमेंट में जैसे कि लाइट एंड साउंड है, आवास निवास है, भोजन के भंडारे की व्यवस्था करने वाले विशेष 18 कम से कम मिनिमम होंगे डिपार्टमेंट, सभी को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनके ही आयोजन संयोजन से ये सुचारू रूप से हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। और आप श्रोतागण जो हमारे इस सम्मेलन का श्रृंगार हो, परमात्मा के अनन्य रतन आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से आभार, दिल का स्नेह, दिल का दुलार और दिल की दुआएं परमात्मा की आप स्वीकार करना। ओम शांति।